यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना यमुना तीरवन चारी जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Ajanu मुझो कनकाव दातो संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो भजो 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 मन पांडुरंग विठला भजो 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 मन पांडुरंग विठला भजो
भजो
सभी लोग प्रेम से गाइए
पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ
Oh.
भजो 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 मन पांडुरंग विठला भजो 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 मन पांडुरंग विठला भजो पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग भजो 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 मन पांडुरंग विठला भजो 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 मन पांडुरंग विठला भजो पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला हा पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठला हा विठल विठल विठला विठल विठल विठला हा विठल विठल विठला पांडुरंग विठला हा विठल विठल विठला पांडुरंग विठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठला हा पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठला हा विठल विठल विठला पांडुरंग विठला हा विठल विठल विठला पांडुरंग विठला हा विठल 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 विठला पांडुरंग विठला విఠల 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 పాండురంగ విఠల భజ 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 మన పాండురంగ విఠల భజ 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 మన పాండురంగ విఠల 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 పాండురంగ విఠల 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 పాండురంగ విఠల 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 పాండురంగ విఠల 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 పాండురంగ విఠల పాండురంగ విఠల పాండురంగ విఠల భజ 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 మన పాండురంగ విఠల భజ 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 మన పాండురంగ విఠల భజ 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 మన పాండురంగ విఠల పండరి విఠలనాథ కీ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్ భవదీనేష్ఠకీ శ్రీమద్ భాగవతం స్కంధ సాత్ అధ్యాయ 4 శ్లోక క్రమాంక 32 मेरे पीछे बोलिए दास वत्सन्न तार्यांग्री पितृवद्दीन वत्सल भ्रातुर्वत्सदृशे स्निग्धो గురు సుష్వీర భావన విద్యార్థ రూప జన్మాఢ్యో మానస్తంభ వివర్జిత విద్యార్థ రూప జన్మాఢ్యో మానస్తంభ వివర్జిత నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూ श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिं बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने यस्या कदापि वसनान् चलखेलनोत्थ धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानी योगी मदुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभा नुभो दिशे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्त्वा मृत में देव गोविंद दामो धर्माधवेति हरे कृष्णा भ्रातुर्वत् सदृशे स्निग्धो गुरुषु ईश्वर भावना विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस स्तंभ विवर्जित श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के चतुर्थ अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान के मनोअवतार श्री नारद मुनि राजसूय सभा में प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्री नारद मुनि राजसूय सभा में प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हुए सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भागवत में कई सारे भक्तों के गुणों का वर्णन किया गया है और भागवत में बारंबार यह सब गुणों का वर्णन करने का सार यही है कि यदि हम यह महान और शुद्ध भक्तों की गुणावली को सुने तो बारंबार सुनने से यह गुण हमारे जीवन में उतर सकते हैं। इसलिए भागवत में बारंबार इस गुणों को दोहराया गया है। यदि कोई वस्तु हम बारंबार सुनते रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन और बुद्धि के ऊपर पड़ता है। इसलिए यह सब गुणों को बारंबार सुनते रहना चाहिए। एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक बार एक ब्राह्मण एक बकरी को अपने कंधे पे लेकर जा रहा था। बकरी जानते ना, मराठी में बकरी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन आप बकरी समझिए। एक ब्राह्मण बकरी को कंधे पे लेकर जा रहा था तो रास्ते में तीन ठग आपस में मिले और ये तीनों ठगों ने, ठग जानते हैं ना, दूसरे को लूटने वाले, तो ये तीन ठग आपस में मीटिंग किए कि आज तो बकरी खाना है, क्या करें, चोरी तो कर नहीं सकते हैं, पकड़ लेंगे पुलिस वाले, डंडे मारेंगे, क्या करें क्या करें। तीनों ठगों ने प्लान बनाया। प्लान बहुत अच्छा था। देखिए उनका प्लान क्या था। तीनों ठग रास्ते में कई अंतर पर खड़े रह गए और ये ब्राह्मण कंधे पे बकरी को लेकर जा रहा था तो पहला ठग उस ब्राह्मण को रास्ते में मिला। रास्ते में मिलकर कहा कि ये ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देवता, ये कुत्ते को कंधे पे लेकर कहां जा रहे हो। वास्तव में थी बकरी, परंतु ये ठग लोग देखिए क्या प्लान बनाए थे। ब्राह्मण देवता, आप तो ब्राह्मण हो, ये कुत्ते को कंधे पे लेकर कहां जा रहे हो। ब्राह्मण ने सोचा ये कुत्ता थोड़ी ना, ये तो बकरी है। ब्राह्मण ने कहा ये बकरी है ना, नहीं ये तो कुत्ता है, फिर आपको जो लगे। इतना कह के वे ठग चला गया। ब्राह्मण को थोड़ा भ्रम हुआ कि ये बकरी को कुत्ता क्यों कह रहा है। तो कंधे पे था बकरी, उन्होंने हाथ पकड़ के कान को जरा देखा, नहीं ये तो बकरी का कान है। आगे चलने लगा। चलते 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 आगे चला तो दूसरा ठग रास्ते में मिला। दूसरे ठग ने कहा कि ब्राह्मण तो बहुत पवित्र होते हैं, तो ब्राह्मण देवता कुत्ते को कंधे पे लेकर कहां जा रहे हो। दूसरे ने वही बात बताई। ब्राह्मण को थोड़ा विश्वास हो गया कि नहीं नहीं ये तो बकरी, बकरी नहीं ये तो कुत्ता ही है। ब्राह्मण ने उस बकरी को हाथ में लेकर देखा, नहीं नहीं ये तो बकरी जैसी है, थोड़ी ना कुत्ता है। ठग ने कहा देखो भाई, हमारा कर्तव्य है आपको बताना, ये कुत्ता है, फिर आपको जो लगे। ब्राह्मण को थोड़ा विश्वास हुआ, कंधे से उसे नीचे उतार दिया, अब कंधे पे नहीं रखना है। धीरे धीरे आगे चलने लगा। तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने कहा कि ब्राह्मण ब्रह्म जाना थी, ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला, और गीता में भगवान ब्राह्मण के कर्तव्य शम दम तप शौच, ब्राह्मण तो पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, ब्राह्मण देवता ये कुत्ते को लेकर कहां जा रहे हो। अब ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि तीन जन एक ही बात को बता रहे हैं, निश्चित ये कुत्ता है। उस बकरी को छोड़ दिए, गंगा में स्नान करके आगे चले गए। ये तीनों ठग उस बकरी को लेकर घर पर आ गए। एक कथा बहुत छोटी सी है, परंतु इस पर सिद्धांत बहुत बड़ा है। वास्तव में ब्राह्मण के पास बकरी थी, परंतु एक बार उन्होंने सुना कि ये बकरी नहीं कुत्ता है, विश्वास नहीं किया। दूसरी बार सुना ये बकरी नहीं कुत्ता है, थोड़ा विश्वास हुआ, और तीसरी बार जब सुना ये बकरी नहीं कुत्ता है तो फिर उसे कुत्ता ही माना बैठा। तो ये सुनने का प्रभाव है। एक ही चीज जब हम बार बार सुनते हैं तो ये हमारे मन और बुद्धि में ढस जाती है। तो उसी प्रकार भागवत में बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के गुणों को बार बार बताया गया है, और इसे हम यदि बार बार सुनते हैं तो यह गुण हमारे मन और बुद्धि में उतर सकते हैं। तो यहां पर नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वैसे तो प्रहलाद महाराज में अनंत अपार गुण है, जिसकी चर्चा हम सुबह के प्रवचन में कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज का एक गुण बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्रहलाद कैसे थे, गुरुषु ईश्वर भावना। प्रहलाद अपने गुरु को भगवान के समान आदर देते थे। गुरुशु गुरु में ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर की भगवान की भावना रखते थे। सतर्क रहिए सुनिए में सुनने में, गुरु को ईश्वर नहीं मानते थे, गुरु में ईश्वर की भावना रखते थे। गुरुशु ईश्वर भावना, गुरु कभी ईश्वर नहीं बन सकता है। हाँ, गुरु ईश्वर जितना पूजनीय हो सकता है। इसलिए भागवत में साक्षात भगवान कहते हैं प्रथम अस्तु गुरु पूज्य। भगवान और गुरु ये दोनों की पूजा करने में आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले गुरु की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान के बारे में हमें बताते हैं। इसलिए प्रथम अस्तु गुरु पूज्य, सबसे पहले गुरु की पूजा होनी चाहिए। ततश्चैव मम अर्चनम, और उसके बाद मेरी अर्चना करो, भगवान कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो कुर्वम सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत। जीवन में जितना भी किया है वह सब कुछ निष्फल हो जाएगा यदि गुरु को आदर नहीं दोगे। गुरु को आदर देना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं वे शास्त्र को प्रकट करते हैं। गुरु किसे कहा जाता है? जो शास्त्र की बात को हमें समझाए उसे गुरु कहते हैं। तो गुरु हमें शास्त्र को प्रकट करते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरु बहुत पूजनीय है, और भगवान से भी ज्यादा उसे आदर देना चाहिए। क्योंकि एक जगह कहा गया है हरो रुष्टे गुरु यात्रा, यदि हमसे हरि का भगवान का कोई अपराध हो गया, भगवान के प्रति यदि अपराध हो गया और हम गुरु जी के चरण में चले गए तो गुरु जी कैसे भी करके वे हमें बचा लेंगे। हरो रुष्टे गुरु यात्रा, हरि यदि रुट गए तो गुरु बचा लेंगे। परंतु गुरु रुष्टे न कश्चन, परंतु यदि गुरु रुट गए, गुरु के प्रति अपराध हो गया तो दुनिया की कोई ताकत उस अपराध से नहीं बचा सकती है। यहां तक साक्षात भगवान भी गुरु के प्रति हुए अपराध से मुक्त नहीं करा सकते हैं। भागवत के नवम स्कंद के तीसरे अध्याय में अम्बरीश महाराज की कथा आप सब लोग जानते हैं। इसलिए सर्वथा यही प्रयत्न करते रहना चाहिए कि गुरु प्रसन्न रहे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में के प्रारंभ में लिखते हैं कि यदि मोर गुरु है चैतन्य दास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यदि मोर गुरु है चैतन्य दास, मेरे गुरुदेव अपने आप को चैतन्य भगवान श्री कृष्ण का दास समझते हैं, परंतु मेरे लिए तो वे भगवान के प्रकाश के समान है, भगवान के समान। और रोज सुबह हम गाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरुवाष्टकम लिखे हैं, रोज सुबह मंगला आरती में हम गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। समस्त शास्त्रों का कहना क्या है कि गुरु साक्षात हरित्वेन, परंतु तुरंत कहते हैं किंतु, लेकिन बट, यह मत समझिए कि गुरु हरि हो चुके, किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य, किंतु गुरु साक्षात हरि के समान पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वे भगवान के प्रिय हैं। इस संसार में कुछ लोगों ने गुरु की परिभाषा को ही बदल दिया है। संसार में कुछ लोग गुरु को ही भगवान मानने लगते हैं। गुरु कुछ उपदेश करते हैं, कथा करते हैं, और जब कथा फेमस हो जाती है तब सब लोग उसे भगवान मानने लगते हैं, और गुरु भी अपने आप को भगवान स्वीकार कराते हैं। हाँ, मैं भगवान हूं, हमारी तरफ पैंट शर्ट में घूमते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं। वास्तव में भगवान भगवान होते हैं। आजकल के पंच महाभूत से बने हुए देह वाले जीव कभी भगवान नहीं हो सकते। आज रोज एक भगवान बन रहा है। पेपर में लिखाते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, ये बाबा ये बापू। भगवान का कुछ लक्षण अलग होता है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, और ये आजकल के भगवान बूढ़े हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है, दांत भी गिर जाते हैं।
आप देखिए भगवान श्री कृष्ण नित्य नव यौवनम च ब्रह्मा जी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में जब युद्ध करने के लिए अर्जुन के साथ थे, पता है उनकी उम्र कितनी थी? 125 साल से ज्यादा। फिर भी कृष्ण कैसे थे? उनकी दाढ़ी मूछ आ गई थी? कभी नहीं। कभी कृष्ण का फोटो देखा? मूछ, बड़ी बड़ी मूछ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। 125 साल के हो गए फिर भी नित्य नव यौवनम च, 16 साल के लगते। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, भगवान के बाल कभी पक नहीं जाते हैं, सफेद नहीं होते हैं। भगवान को कभी हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है, परंतु आजकल के मूर्ख अपने आप को भगवान मानते हैं, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए। भगवान भगवान है। कुछ लोग यही कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु है नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात ब्रह्म है। ये श्लोक सही है, वेदों का श्लोक है, परंतु इसके भाव को समझना चाहिए। संस्कृत का ज्ञान नहीं है और वैसे ही संसार में इसका अर्थ प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी ने भाव लिखा है। भाव क्या है? गुरु क्या ब्रह्मा है? गुरु विष्णु है? गुरु महेश है? कुछ लोग कहते हैं गुरु विष्णु है, गुरु भगवान विष्णु सृष्टि का सर्जन करते हैं, गुरुदेव तो बेचारे एक पुत्र को भी सर्जन नहीं किए हैं, सन्यासी हैं, विवाह नहीं किए हैं, कैसे विष्णु हो गए? ब्रह्मा कैसे ब्रह्मा हो गए? भगवान विष्णु इस सृष्टि को का पालन करते हैं। अरे गुरु जी एक फैमिली का भी पालन नहीं कर सकते हैं, वो खुद झोपड़ी में रह रहे हैं। और गुरु महेश शिव जी इस ब्रह्मांड का प्रलय करते हैं। क्या गुरु प्रलय करते हैं? नहीं, इसका भाव यह है, गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु नहीं है, गुरु महेश नहीं है, परंतु गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश जितने पूजनीय है, वंदनीय है। गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते हैं, गुरु भगवान के राह दिखाने वाला है। और इस संसार में यदि कोई गुरु अपने आप को भगवान मानता है तो वह गुरु गुरु नहीं है। आगे प्रहलाद महाराज कहेंगे ऐसे गुरु की शरण में जाना वे तो वैसा ही होगा जैसे अंधा यथांधे उपनीय माना, जैसे कोई कुत्ते की पूंछ पकड़कर संसार सागर को पार करना चाहे, वे कुत्ता भी डूब मरेगा और पूंछ पकड़ने वाला भी डूब मरेगा। अपने आप को भगवान मानने वाला स्वयं तो नरक में जाता है, उसके पीछे हजारों लोगों को नरक में लेकर जाता है। इसलिए गुरु ईश्वर नहीं है, परंतु गुरुशु ईश्वर भावन, गुरु ईश्वर के समान पूजनीय है, क्योंकि ईश्वर जो है ईश तत्व है, उनका देह सच्चिद आनंद है, परंतु गुरु पंच महाभूत से बने हुए। तो गुरुशु ईश्वर भावन, प्रहलाद महाराज गुरु में ईश्वर का भाव रखते थे, गुरु को ईश्वर नहीं मानते थे, ईश्वर तो भगवान विष्णु को मानते थे, भक्ति विष्णु की करते थे। आजकल के गुरु कहते हैं ना कि आप कुछ मत करो, मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, मेरा मंत्र जपो, आपका कल्याण हो जाएगा। वो गुरु जो गुरु ऐसा कहते हैं कि मेरा ध्यान करो, वे खैनी खाते हैं। तो क्या खैनी खा रहे हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए? गुरु की कुछ कौन सी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए? कुछ लोग, कुछ गुरु गांजा पीते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में हो या न हो, परंतु हरिद्वार वह जगह पर बहुत है गांजा पीने वाले, खैनी खाने वाले, चाय पीने वाले, ये सब गुरु नहीं है। अपने आप को भगवान मानने वाला कोई गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुशु ईश्वर भावन, गुरु ईश्वर नहीं है, गुरु में ईश्वर की भावना होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज गुरु के प्रति ईश्वर के समान आदर रखते थे। और आगे प्रहलाद महाराज के गुण का वर्णन करते हैं, विद्या अर्थ रूप जन्माढ्यो। देखिए प्रहलाद महाराज के पास किसी भी बात की कमी नहीं थी। कहते हैं विद्या, प्रहलाद महाराज इतने विद्या, इतने प्रवर थे, इतने प्रवर थे, इस दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में नंबर वन थे। एक बार पढ़ लेते थे सब कुछ याद हो जाता था। स्वर की यूनिवर्सिटी के ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, विद्या का कोई कमी नहीं थी, संपूर्ण विद्या थी। और दूसरी बात कहते अर्थ, धन की कोई कमी नहीं थी। अब प्रहलाद महाराज के पास बताइए धन की क्या कमी हो सकती है, जिसका बाप तीनों भुवन का राजा बनकर बैठा है, पृथ्वी नीचे के लोग और ऊपर के लोग सभी लोगों का राजा बनकर जो बैठा है, कुबेर जिसके घर पर झाड़ू और पोछा लगा रहा है, उसके पास धन की क्या कमी हो सकती है। संपूर्ण मात्रा में धन था, संपूर्ण मात्रा में विद्या थी। इतना ही नहीं, रूप भी कैसा था, संपूर्ण सुंदर था। कहते हैं आचार्य गण टीकाओं में कहते हैं प्रहलाद महाराज का रूप सांवले रंग का था, जैसे भगवान विष्णु कृष्ण के समान सांवले थे, तो रूप भी बहुत सुंदर था। और जन्माढ्य, जन्म भी बहुत अच्छे परिवार में हुआ था। हिरण्यकश्यपु के वंश में जन्म हुआ था, परंतु बहुत अच्छा परिवार। ब्रह्मा जी से केवल चौथी पीढ़ी में प्रहलाद महाराज का जन्म था। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीची, मरीची के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद। ब्रह्मा जी से केवल चार पीढ़ी बीच में थी। ब्रह्मा जी के पुत्र के पुत्र के प्रपोत्र थे। जन्म अच्छे कुल में, रूप बहुत सुंदर था, धन की कोई कमी नहीं थी और विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे। और इतना सब होने के बाद भी मानस स्तंभ विवर्जित, थोड़ा भी अभिमान नहीं था, थोड़ा भी अहंकार नहीं था। चाणक्य पंडित जो बहुत बड़े नीतिकार हमारे भारत वर्ष में हो गए, वे तो कहते हैं ये चार नहीं, ये चार में से किसी के पास एक भी मिल जाए तब भी वो पैजा में से बाहर हो जाएगा, तब भी वह इतना अभिमान और अहंकारी हो जाएगा, पृथ्वी पर किसी को छूने नहीं देगा। ये चार विद्या, अर्थ, जन्म और रूप, ये चार में से एक भी यदि किसी के पास आ जाए तो उसका पतन हो सकता है। जैसे धन को ही ले लीजिए, आज संसार में हम देखते हैं थोड़ा सा धन किसी के पास क्या आ जाता है, उसे अहंकार बढ़ जाता है, पृथ्वी से तीन कदम ऊपर चलने लगता है। प्रभुपाद जी तो इसे नशा कहते हैं, ये धन एक नशा है। और ये तो नशा से भी बहुत बिगड़ी हुई वस्तु है, क्योंकि नशा तो जब हम पीते हैं पेट में जाता है तब चढ़ता है, परंतु ये धन पाकिट में आ जाता है तो व्यक्ति प्रजा में से बाहर हो जाता है। थोड़ा सा लक्ष्मी देवी की क्या कृपा हो गई, व्यक्ति अंधा हो जाता है। पता है धन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उसके पहले विष प्रकट हुआ। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि ये धन किसी के पास आ जाए वो व्यक्ति मर जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के साथ विष प्रकट हुआ, परंतु लक्ष्मी उसे मारती नहीं है, उसे अंधा और बहरा बना देती है। जिसके पास धन आ जाता है वो उसकी आंख चली जाती है। लक्ष्मी का वाहन जानते हैं आप? लक्ष्मी का वाहन कौन सा है जानते हैं? उल्लू। उल्लू जानते हैं? उल्लू दिन को नहीं देखता है, रात को देखता है। जिसके ऊपर लक्ष्मी देवी की कृपा हो जाती है, जिसके पास थोड़ा सा धन आ जाता है, फिर वह दिन को नहीं देखता है, दिन को नहीं दिखाई देगा, दिन को सोएगा और रात को दिखाई देगा बियर बार में, शराब की दुकान में। धन बहुत बड़े पतन का काम है। धन बहुत अच्छी वस्तु, मैं नहीं कर रहा हूं कि धन बहुत खराब है, धन बहुत अच्छी वस्तु है, परंतु उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमारे इस्कॉन संस्था में भी एक से एक धनी है, अम्बरीश फोर्ड, मफतलाल एंड मफतलाल, जो अभी भी अपने धन को भगवान की सेवा में लगाए हैं। परंतु जो लोग धन के मद में, अभिमान में आ जाते हैं, उसका पतन हो जाता है। तो कहते हैं ये चार में से एक भी यदि किसी के पास आ जाए तो उसका पतन हो सकता है। और महारानी कुंती तो यही कहती है, जन्म ऐश्वर्य सुति श्री भी एद मान मदह पुमान नेवार हत्य विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। हे कृष्ण, कृष्ण जिसके पास धन है, जिसका अच्छा अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, वे तो आपकी भक्ति कभी नहीं कर सकता है। उसे तो अच्छा है गरीब लोग, जिसके पास कम धन है, कम बुद्धि, कम विद्या है, जो गवार है, ये आपकी भक्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं, सत्य है। भगवान की भक्ति आप रेशियो लगाइए, कृष्ण की भक्ति करने वाले कितने हैं? 99% गरीब लोग हैं और 1% हो गए जो अमीर लोगों में से। तो जन्म ऐश्वर्य, परंतु प्रहलाद महाराज के पास ये सब कुछ था, फिर भी उसे अभिमान और अहंकार नहीं था। कहते मानस स्तंभ विवर्जित, मानस स्तंभ, स्तंभ का अर्थ था एक खंभा, एक खंभा कभी झुकता है? कहते जिसके पास धन आ जाता है, जिसके पास विद्या आ जाती है, जो इसका अच्छा परिवार में जन्म हो जाता है और जिसके पास बहुत सुंदर रूप होता है, वे एक खंभे के समान बन जाता है, कभी झुकता नहीं है। परंतु प्रहलाद महाराज इस स्तंभ से विवर्जित, बिल्कुल वर्जित थे, झुकते थे। तो प्रहलाद महाराज में बहुत सुंदर सुंदर गुण थे, इतना सुंदर गुण, देखने में भी सुंदर थे, धन की कोई कमी नहीं, विद्या में प्रवर थे, फिर भी भगवान के भजन में लगे हुए थे। अब हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना इतनी 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 वस्तु प्रहलाद के पास थी, मोबाइल बंद रखना चाहिए। हरे कृष्णा इतनी इतनी वस्तु होने के बाद भी प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति करते थे। हमारे पास ये चारों में से क्या है बताइए? कुछ नहीं, फक्कड़ बाबा है हम, फिर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं और हम इस चारों के पीछे दौड़ रहे हैं कि थोड़ा धन मिल जाएगा, थोड़ी विद्या मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। जो कर्म में लिखा है, आगे प्रहलाद महाराज कहेंगे इस बात को। तो बहुत सुंदर सुंदर गुण आगे कहते हैं, न उद्विग्न चितो व्यसनेषु निष्प्रिय। प्रहलाद महाराज को यदि कोई भी व्यक्ति परेशान करता, दुखी करता, फिर भी उसके प्रति वे निराश नहीं होते थे। न उद्विग्न चित, उनका चित उद्विग्न नहीं होता था। आज रास्ते से हम जा रहे हैं और किसी ने कह दिया, ये लंबी लंबी चोटी लेकर कहां जा रहे हो और इतना बड़ा बड़ा तिलक करने की क्या जरूरत है, छोटा सा करो। भक्तों को कई लोग चिढ़ाते हैं, तो भक्तों, कुछ भक्त ऐसे होते हैं उस पर क्रोधित हो जाते हैं, परंतु प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं थे। कोई उसे कितना भी कहता था, कितना भी परेशान करता था, फिर भी प्रहलाद महाराज न उद्विग्न चित, उनका चित उद्विग्न नहीं होता था। प्रहलाद महाराज को मारने का बहुत बहुत प्रयास किया गया, फिर भी उसका चित उद्विग्न नहीं होता था। भक्तों के जीवन में यह होता है, भक्तों के जीवन में बहुत दुख आता है, कठिनाई आती है, परंतु उसका चित उद्विग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्तों के जीवन में जो दुख आता है, कठिनाई आती है, ये भगवान की कृपा से आती है। भगवान परीक्षा लेते हैं भक्तों की। कभी कभी प्रश्न होता है, भक्त के जीवन में ही इतने सारे दुख क्यों आता है? और हमारे जीवन में भी कुछ लोग सोचते होंगे कि हम भक्ति नहीं करते थे तब बहुत सुखी थे, भक्ति करने के बाद ही दुख आ रहा है, इसे तो अच्छा है छोड़ दो भक्ति। ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये भगवान की कृपा से भक्त के जीवन में दुख आता है। सोने गोल्ड को जानते हो, सोना को यदि तपाया जाए, गर्म किया जाए, तो उसकी चमक और बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भक्तों को गर्म करते हैं, दुखी करते हैं, क्यों? उसकी चमक को, उसकी भक्ति को निखारने के लिए। एक संत तो बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, यह दुख भक्ति में आगे बढ़ने के लिए होते हैं, परंतु कुछ लोग इसे नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने की वजह गिर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आप रास्ते से जा रहे हो और बीच में बहुत बड़ा 1.5 फुट का पत्थर आया। यदि आपका ध्यान है कि यह पत्थर रास्ते में पड़ रहा है, तो फिर आप उस पत्थर के ऊपर पांव रख के आगे चले जाओगे, परंतु यदि आपका ध्यान नहीं है, तो उसी पत्थर के साथ आप टकराओगे, आप गिर जाओगे और खून भी निकल सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन के रास्ते में दुख रखते हैं। यदि हम सतर्क रहे, भक्ति में स्थित रहे, तो वह दुख भक्ति में हमें और 1.5 फुट ऊपर उठा देंगे, वह दुख ही हमें भक्ति में ऊपर उठा देंगे। परंतु यदि हम भजन भक्ति और साधना में ध्यान नहीं रखे तो वही दुख हमें भक्ति में पतन करा सकते हैं। इसलिए भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जब दुख आए तो विचलित ना हो। अरे पद्म पुराण में तो एक जगह पर भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं, भगवान जब कृपा करते हैं, कुछ भक्त लोग जब बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करने वाले के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, क्या कृपा करते हैं, कहते तस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने। जब मैं मेरे भक्त के ऊपर कृपा करता हूं तो सबसे पहली कृपा क्या होती है, मैं उसके सारे धन को हर लेता हूं, सबसे पहले उसे कंगाल कर देता हूं। हुआ है सबके जीवन में, जो लोग भक्ति में आते हैं उसका बिजनेस आधा हो जाता है, क्योंकि मन भगवान में लग गया है, राधा गोविंद जी में। मंदिर में जाने का मन होता है, कथा कीर्तन सुनने का मन होता है, इसलिए बिजनेस तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये तो कृपा बहुत गड़बड़ वाली है। भगवान कहते हैं तस्या अनम अनुग्रहणामि, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं, जिसके ऊपर कृपा करता हूं, तो सबसे पहले हरिष्य तद धनम शने, उसका धन हर लेता हूं। और दूसरी बात क्या करता हूं, दूसरी कृपा क्या करता हूं, कहते हैं कि उसके ऊपर दूसरी कृपा यह करता हूं कि उसके कुटुंब में, उसके फैमिली में उसका झगड़ा करवा देता हूं। होता है जीवन में, जो लोग भक्ति करते हैं फिर उसका फैमिली के साथ इतना जमता नहीं है, फैमिली वाले कहते हैं ये तो भगत हो गया, ये तो तुकाराम हो गया, ये सुनने वाला नहीं है। तो संसार के लोग बस गाली देते हैं कि ये तो हमारे समाज में, ये तो हमारे विवाह में भी नहीं आता, ये तो किसी के घर पर नहीं जाता है, ये तो हरे कृष्ण हो गया। हाँ तो ये भगवान की कृपा ही समझिए। देखिए जीवन में धन चला गया तो समझ लो भगवान की पहली कृपा हो गई, और स्वजनों के साथ झगड़ा हो गया तो समझ लो भगवान की दूसरी कृपा हो गई। और भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी मैं उसका धन हर लेता हूं, स्वजनों के साथ झगड़ा करा देता हूं, और ऐसी स्थिति में भी यदि वह भक्त मेरे चरण को पकड़ कर रखे, मेरी भक्ति में स्थित रहे, तो मैं उसे ऐसा पद देता हूं, कहते हैं देवानाम अपि दुर्लभम, बड़े बड़े 33 करोड़ देवता भी जिस स्थान में नहीं जा सकते हैं वैसा वैकुंठ और गोलोक वृंदावन उसे प्रदान कर देता हूं, जहां पर कोई नहीं जा सकता है वैसा गोलोक वृंदावन प्रदान कर देता हूं। यह है भगवान की कृपा। परंतु उस गोलोक वृंदावन में जाने के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस जीवन में 50 साल तक खुश होकर रहो, वैसे भी कौन खुश रहता है बताइए, संसार की गालियों तो सुनता है। तो दो ऑप्शन है, मान लीजिए संसार में कुछ थोड़ा बहुत सुख भी आप यदि मानते हो तो 50 साल के लिए थोड़ा बहुत सुख है, और 50 साल के बाद फिर आपको नरक में जाना पड़ेगा, ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता, 50 साल के लिए दूसरों की गाली सुनो और 50 साल के बाद वैकुंठ गोलोक वृंदावन आपको मिल जाए, आप क्या लेना चाहोगे है? हाँ तो फिर 50 साल भाई थोड़ा बहुत दुख मिल भी जाता है तो सह लेना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज न उद्विग्न चितो व्यसनेषु निष्प्रिय, कोई कुछ भी कहता, कुछ भी कष्ट भी देता, फिर भी उनका चित उद्विग्न नहीं होता था। तो हमारे जीवन में भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति मय जीवन में भी यदि दुख आता है तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा समझकर। संत तुकाराम या एकनाथ, गन्ने वाले तुकाराम जी आप सब जानते होंगे, फिर भी भाई जिसका खाते हैं उसका गुण गाएंगे, जहां पर आए हैं जिस स्थान पर महाराष्ट्र में। एक बार संत तुकाराम 24 घंटा भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, उनकी पत्नी उसे बहुत डांटती थी, आप कुछ करते नहीं हो, कुछ तो काम धंधा बिजनेस करो, अब जाओ खेत में बहुत सारे गन्ने पके हैं और गन्ने की बोरी बांध कर घर पर लेकर आओ। तुकाराम जी कृष्णा कृष्णा करते हुए गए खेत में, गए सारे गन्ने को काटे और गन्ने की बोरी बांध कर अपने सिर पे रखकर घर पर आ रहे थे। तो रास्ते में कई सारे बालक मिले, प्रभु हमें एक गन्ना दीजिए ना, तो तुकाराम जी ने कहा, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, ये राम जी का ही है, सब कुछ राम का है, खाओ पेट भर भर कर खाओ। तो रास्ते में कई सारे लोग मिलने लगे, हमें दीजिए हमें दीजिए, तुकाराम सबको देते गए सबको देते गए। घर पर जब पहुंचे तो एक गन्ना बचा। तुकाराम की पत्नी ने पूछा कि प्रभु, मैंने तो पूरे खेत का गन्ना लाने के लिए कहा था, आप एक गन्ना लेकर क्यों आए? तुकाराम जी ने कहा, मैं तो सारा गन्ना ले गन्ने की बोरी बांध कर आ रहा था, लेकिन रास्ते में सब लोग मिल गए तो मैं कैसे ना कर सकता। तुकाराम की पत्नी को तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, तुकाराम के हाथ से गन्ना लिया और गन्ना लेकर जोर से तुकाराम के शरीर पर मारा, गन्ने के दो टुकड़े हो गए। परंतु तुकाराम ने उसकी पत्नी को इतना ही कहा, देखो देवी, भगवान की कितनी कृपा है हम पर, आधा गन्ना तुम खाओ आधा गन्ना मैं खाऊं। ये भगवान के भक्त, भक्तों का स्वभाव ऐसा होता है, ये भगवान की कृपा है। भक्त जो होते हैं न उद्विग्न चित्त व्यसनेष निष्प्रिय, कभी भी किसी के दुख से या बहकाने से वे दुखी नहीं होते, स्थिर रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज में यह गुण था। आगे प्रहलाद महाराज के गुण कहते हैं, श्रुतेषु दुष्टेषु गुणेषु अवस्तुद्रि। प्रहलाद महाराज भौतिक संसार के बारे में बहुत सुनते थे, बहुत देखते भी थे, परंतु सुनने और देखने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करते थे, अवस्तुद्रि। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसार में हम भी बहुत सुनते हैं और बहुत देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, बहुत बड़े बड़े मॉल आज तो बन रहे हैं और डिस्प्ले में ऐसा सजा कर रखते हैं, ऐसा सजा कर रखते हैं और ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा ही लगता है कि इसके बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। कोलगेट की इतनी अच्छी एडवर्टाइज देते हैं, इतनी अच्छी एडवर्टाइज देते हैं कि बस ये कोलगेट के अलावा हम जी नहीं सकते। मोटर गाड़ी, बाइक, पर आज तो कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक को इतना सजाकर मार्केट में पेश करते जैसे स्वर्ग से अमृत को ही लेकर आए हैं। तो ऐसी ऐसी वस्तु को प्रहलाद महाराज देखते थे, परंतु देखने के बाद भी अवस्तुद्रिक उसे स्वीकार नहीं करते, उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती थी। तो हमें भी प्रहलाद महाराज की तरह संसार में तो बहुत कुछ देखने मिलेगा भाई, बहुत मॉल दुकानों में बहुत बहुत, माताओं के लिए भी साड़ी भी बहुत होगी, गहना भी बहुत होगा, चूड़िया भी बहुत होगी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि घर पे जाकर पतिदेव को कहे कि मुझे वो साड़ी लेनी है। भक्त का स्वभाव यह होता है कि उसे देखकर अवस्तु देख उसे अनदेखा कर दे। प्रहलाद महाराज में यह गुण था। आगे कहते हैं, दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा। वे 2400 घंटा अपने मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखते थे। प्रहलाद महाराज का मन उनके वश में था, उनकी इंद्रियां उनके वश में थी, और इतना ही नहीं, प्रशांत कामों, प्रहलाद महाराज बिल्कुल निष्काम थे, बिल्कुल निष्काम, भगवान के पास से कुछ कुछ भी लेने की भावना नहीं थी। आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, या भक्ति भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, ये भी गलत नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृ तिनोर्जुन, आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी चे भरत शब। परंतु प्रहलाद महाराज निष्प्रिय निष्काम भक्त थे, कुछ भी नहीं चाहते थे, और वास्तव में निष्काम भक्त को ही शुद्ध भक्त कहा जाता है। और प्रभुपाद जी बार बार अपने जीवन में कहे हैं कि ऐसे भक्तों से ही भागवत कथा सुननी चाहिए। कहते हैं कि निष्काम भक्त से ही भागवत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह विषय यहां पर आया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। संसार में प्रवचन करने वाले, भागवत कथा करने वाले हजारों लोग हैं, और यही भागवत, यही गीता का ज्ञान देते हैं, परंतु वह निष्काम नहीं है। मन में बहुत कामनाएं हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी कामना क्या है? धन की कामना। बिना धन लिए व्यासपीठ के ऊपर नहीं बैठते हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, पहले बिजनेस होता है कि मैं इतना लूंगा, कथा कराने वाले कहते कि नहीं नहीं, हम आपको केवल 25 लाख दे सकते हैं, वे कहते नहीं हम 50 लेंगे। वे बिजनेस होता है, और वे धन लेने के बाद वे व्यासपीठ के ऊपर बैठकर कथा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों के मुख से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहिए। यद्यपि वे भागवत बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं जैसे दूध दूध है, उसमें सभी गुण है, परंतु उस दूध को यदि स्पर्श सर्प यदि स्पर्श कर ले तो वो दूध विष बन जाता है। दिखता है दूध परंतु उसमें विष का प्रभाव आ जाता है। वैसे ही जो लोग निष्काम नहीं है, जो लोग निष्काम जिसके हृदय में कामना है, ऐसे लोगों के मुख से यदि भागवत सुनेंगे तो हमारी कामना कैसे जा सकती। अरे जो लोग इस संसार में थोड़े से धन की आसक्ति से मुक्त नहीं, वे इस संसार की आसक्ति से कैसे मुक्त करा सकते। इसलिए कथा ऐसे लोगों से सुननी चाहिए जो निष्काम हो, जिसको कोई कामना ना हो। तो प्रहलाद महाराज निष्काम थे और अंत में कहते असुर। इतना कुछ प्रहलाद महाराज इतनी भक्ति करते थे, कहते थे कौन से कुल से थे, कहते असुर कुल से थे। इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है। हम प्राय प्रचार करते वक्त कहते हैं कि आप भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, माला जपिए, तो कुछ लोग कहते हैं हम कैसे माला जपें, हमारे घर में सब लोग असुर के समान है, हमारे पिता हिरण्यकश्यप जैसे भक्ति नहीं करने देते हैं, हम जिस ऑफिस में जाते हैं वहां पर भक्ति हो ही नहीं सकती है। आप देखिए हम जहां पर रहते हैं, प्रहलाद महाराज कैसे लोगों के बीच में रहते थे, उससे तो अच्छे हैं हमारे घर पर। हम जिसके आजू बाजू में रहते हैं असुरों से तो बेचारे अच्छे हैं। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान की शुद्ध भक्ति करते थे। केवल प्रहलाद ही नहीं, यदि आप रामायण में चलो तो विभीषण रावण का भाई था, असुर कुल में लंका में रहता था, फिर भी भगवान श्री राम की भक्ति करते थे। हनुमान जी जब विभीषण से मिले तो विभीषण ने यही कहा कि हनुमान जी महाराज जैसे 32 दांत के बीच में एक जीवा की हालत होती है, वैसे यह असुरों के बीच में मेरी स्थिति है। ये 32 दांत जो है चक्कू की तरह खड़े है, यदि जीव हमारी जीवा थोड़ी भी 19-20 हो जाए तो खच करके दांतों के बीच में दब जाती है। बहुत सतर्क रहना पड़ता है जीव को। तो उसी प्रकार असुरों के बीच में मैं रह रहा हूं, जीव की जीवा की तरह मेरी हालत है। परंतु हनुमान जी आप मिल गए हो, आपका दर्शन हो गया, इसलिए मेरे हृदय में विश्वास हो गया कि भगवान राम के भक्त का दर्शन हो गया तो राम का दर्शन होना दिन दूर नहीं है, बहुत कम दिनों में राम का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि जब भक्त का दर्शन हो जाता है तो भगवान का दर्शन निश्चित होता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज, नारद मुनि कहते हैं कितना गुण बताऊं, नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुण को बता बता कर थक गए। अंत में कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, यस्मिन महत गुणा राजन गृणन्ते कवि विर्मुह नते धुना विधीयन्ते यदा भगवत ईश्वरे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के गुण तीनों भुवन में प्रचलित है, फेमस है, वैसे ही प्रहलाद के गुण सभी तीनों भुवन में फेमस है। इतना ही नहीं, यह साधु गाथा सदसी रिपो वि सुरान रिप प्रति मानम प्रकुर्वन्ति किमु ताने भवदृशा। कहते हैं कि असुरों के समाज में, असुरों के समाज में जब साधुओं का नाम निकलता है, भक्त का लिस्ट निकलता है, तो सभी भक्तों में सबसे पहले प्रहलाद का नाम होता है। असुर लोग भी कहते हैं कि भक्त हो तो प्रहलाद जैसा। देवताओं की बात छोड़ दीजिए, असुर लोग भी प्रहलाद के गुणों को गान करते रहते हैं। और गुणे अमलम संख्ये महात्म्यम तस्य सूच्यते। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के कितने गुणों का वर्णन करूं, असंख्य गुण है प्रहलाद में जिसे गिनना मुश्किल है। गुणे अमलम असंख्ये, असंख्य असंख्य गुण प्रहलाद में है, परंतु ये सभी गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है, अंत में सभी गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण बताते हैं कि वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। प्रहलाद महाराज में सबसे श्रेष्ठ गुण क्या था, कहते हैं वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान कृष्ण में उनकी नैसर्गिक जन्मजात स्वाभाविक रति और प्रेम था। जीवन में सबसे बड़ा गुण यदि कोई है तो वे ये है कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाना। इंजीनियर बनो या न बनो, डॉक्टर बनो या न बनो, कृष्ण के प्रेमी यदि हम बन गए तो निश्चित हमारा उद्धार हो जाएगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी ख्याति किसकी है, कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति, कीर्ति में सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है। तब राय रामानंद उत्तर देते हैं कि कृष्ण भक्त बलिया, गले में तुलसी की कंठी और मस्तक में तिलक धारण करना और अपने आप को कृष्ण का भक्त बना देना, ये इस संसार में केवल भौतिक जगत में नहीं त्रिभुवन में सबसे बड़ी ख्याति सबसे बड़ी कीर्ति यह है कि वह कृष्ण का भक्त बन गए। क्योंकि यह डॉक्टर वकील पुलिस यह सब डिग्री केवल 50-100 साल तक रहती है, परंतु भगवान के भक्त की कीर्ति जन्म जन्मांतर तक चलती रहती। प्रहलाद महाराज हो गए, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी संसार में सब लोग प्रहलाद महाराज के गुण को सुनते हैं। आज भी हम सब लोग भगवान के सामने प्रहलाद के गुण की चर्चा कर रहे हैं। ये है भक्त की ख्याति। तुकाराम इस संसार में आए चले गए, कई सैकड़ों वर्ष बीत गए, परंतु फिर भी महाराष्ट्र में आज भी राज कर रहे हैं, आज भी जीवंत है। उनकी ख्याति कीर्ति का कभी नाश नहीं होता है। मीराबाई नरसिंह मेहता एक से एक भक्त आए आकर चले गए, लेकिन आज भी सभी जगह पर वे अमर है, उसकी कीर्ति का कभी नाश नहीं होता है। भगवान के भक्त की कीर्ति का नाश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण से प्रेम करते हैं। असंख्य असंख्य गुण किसी में हो सकते हैं, परंतु सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण वह है भगवान के प्रति प्रेम रखना। और कैसा प्रेम? नैसर्गिक, जन्मजात, स्वाभाविक। स्वाभाविक का अर्थ क्या होता है? स्वाभाविक का अर्थ होता है बाहर से डालना नहीं पड़ता है। आज तो लोगों को कहना पड़ता है माला जपिए, मंदिर आइए, पूजा कीजिए, भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए, ये तो बाहर से प्रेम भरा जा रहा है। प्रहलाद महाराज को अंदर से नैसर्गिक, उदाहरण के तौर पर जैसे कस्तूरी होती है, जानते कस्तूरी, कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी होती है, तो कस्तूरी में जो सुगंध होती है वे बाहर से नली नहीं डाली जाती है, स्वाभाविक होती है। जैसे अग्नि में दहन शक्ति, जैसे आग लगती है तो आग में से गर्मी बाहर से नहीं लानी पड़ती है, आग से ही गर्मी निकलती है। वैसे प्रहलाद महाराज के हृदय में स्वाभाविक भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, स्वाभाविक, ये सबसे बड़ा गुण है। और इसीलिए भगवान विष्णु के प्रति प्रेम होने के कारण ही प्रहलाद महाराज का आचरण अद्भुत था। अब तक नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन किए, अब आगे की कथा में प्रहलाद महाराज के आचरण का वर्णन करते हैं। कुछ श्लोकों में प्रहलाद महाराज कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे। कहते न्यस्त क्रीड नको बालो जड़वत तन मनस्तया। प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक थे और उनके साथ रहने वाले जितने भी बालक थे वे सब आपस में खेलते थे, परंतु प्रहलाद महाराज कभी भी खेलने में ध्यान नहीं देते थे, कभी भी नहीं खेलते थे। वे जड़वत, कभी कभी वे जड़ के समान बैठे रहते थे, घंटों भर एक ही जगह पर बैठे रहते थे, जड़वत। क्यों? क्योंकि जब वे बैठते थे तो उसे भगवान कृष्ण का स्मरण होता था। और जड़वत बैठे रहते थे, कुछ लोगों को लगता था कि लगता है इसे किसी ग्रह ने पकड़ लिया है। होता है ना संसार में, कुछ लोग कहते हैं इसे शनि ग्रह नड़ रहा है, कुछ करना चाहिए, अंगूठी पहननी चाहिए, किसी को मंगल नड़ता है, किसी को सोम नड़ता है, किसी को बुध नड़ता है, और शनि देव बेचारे ज्यादा नड़ते हैं कभी कभी। शनि का नाम आया है तो एक बात मुझे याद आ गई। एक बार शनि देव और लक्ष्मी जी दोनों साथ में खड़े थे, तो लक्ष्मी जी ने शनि देव को कहा कि संसार के लोग मुझे सुंदर कहते हैं, वास्तव में मैं संसार में सबसे ज्यादा सुंदरी हूं। शनिदेव ने कहा नहीं नहीं, तुमसे तो ज्यादा मैं सुंदर हूं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं भाई मैं सुंदर हूं। शनिदेव ने कहा नहीं मैं सुंदर हूं। आपस में झगड़ा हो गया और उसी समय नारद मुनि वहां से निकले। नारद मुनि वहां से निकले, शनिदेव और लक्ष्मी जी ने बुलाया, नारद जी यहां पर आइए, यहां पर आइए, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। ये लक्ष्मी बोल रही है कि मैं सुंदर हूं, मैं कह रहा हूं मैं सुंदर हूं, आप बताओ कि हम दोनों में से कौन सुंदर है। अब बेचारे नारद जी क्या करे, यदि लक्ष्मी जी को कह दे कि आप सुंदर नहीं हो तो लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे, और यदि शनिदेव को कह दिया कि आप सुंदर नहीं हो तो शनिदेव तो फिर इतना भारी पड़ जाएंगे कि नारद मुनि की वीणा फीणा को फाड़ तोड़कर फेंक देंगे, कि शनि बहुत भारी ग्रह है, अब क्या करें। नारद मुनि ने कहा भाई आप ये मुझे मत पूछो और किसी को पकड़ो। शनि देव ने कहा यहां पर आओ, बताओ हम दोनों में से कौन सुंदर है, अंपायर रेफरी आप हो। पर देखो जवाब नहीं दिया ना तो अभी ही दो तीन घुसता मार दूंगा, अब क्या किया जाए। नारद मुनि सोचने लगे अब दोनों में से किसे सुंदर बताऊं, और मन में तो यही सोचे लक्ष्मी तो सुंदर है, ये काला कलूटा ये थोड़ी ना सुंदर है। लेकिन इसे यदि कुछ कह दिया तो भारी पड़ जाएगा, क्या करे क्या करे। नारद मुनि भगवान कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, भगवान के भक्त तो चतुर होते हैं। नारद मुनि ने कहा एक काम करो, अब आप दोनों मेरे बाजू में खड़े हो, कैसे डिसीजन ले सकता हूं, आप दोनों चलो थोड़ा, जैसे फैशन शो होता है उसमें चलते हैं लोग। नारद ने कहा कभी पृथ्वी पे गए नहीं आप दोनों, फैशन शो में थोड़ा चलना पड़ता है फिर आना पड़ता है तब जाकर डिसीजन लिया जाता है। नारद मुनि ने कहा मैं यहां पर खड़ा हूं, आप दोनों थोड़ा चलो 10-15 फुट चलो और चलकर वापस आओ, तब मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूं। तो शनि और लक्ष्मी दोनों चले, थोड़ा चलकर वापस आए, तब नारद ने कहा बस पता चल गया, बताओ बताओ। शनिदेव ने कहा, नारद मुनि ने देखो क्या जवाब दिया, कहा कि ये जो लक्ष्मी जी है ना, ये लक्ष्मी जी जब दूर से आ रही है, लक्ष्मी जी आती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, और शनिदेव जब आप जाते हो तब बहुत अच्छे लगते हो। शनिदेव भी खुश, लक्ष्मी जी भी खुश, नारद मुनि नारायण करके चले गए। भगवान के भक्त का स्वभाव है। मैं तो यह कह रहा था कि संसार में कुछ लोग मुड की तरह जड़ की तरह जब बैठे रहते हैं तो लोग कहते हैं कि इसे ग्रह लग गया है। प्रहलाद महाराज भी जड़वत जड़ के समान बैठे रहते थे, लोगों को लगता होगा कि इसे ग्रह लग गया है। नारद मुनि ने कहा वास्तव में उसे ग्रह लगा था, परंतु कौन सा ग्रह लगा था, कहते कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, काले रंग का भगवान कृष्ण नाम का ग्रह लग गया था। और ये सत्य बात है भाई। पहली बात तो यह है कि इस संसार में आप किसी भी ग्रह से परेशान हो, शनि हो सोम हो मंगल हो, कृष्ण का ग्रह यदि आपको लग जाए तो ये सारे ग्रह भाग जाते हैं। परंतु कृष्ण का ग्रह भी साधारण ग्रह नहीं है भाई। रूप गोस्वामी पद्यावली में बहुत सुंदर कहते हैं कि देखो जीवन में यदि भौतिक सुख भोगना चाहते हो, अपनी पत्नी के साथ भोग भोगना चाहते हो या अपने पुत्रों के साथ आनंद लेना चाहते हो तो मैं सत्य कहता हूं वृंदावन में मत जाना। वृंदावन में कभी मत जाना, यदि वृंदावन में चले गए तो भौतिक भोगों से छुटकारा हो जाएगा। और वृंदावन में भी यदि चले गए तो यमुना के किनारे पर मत जाना। यदि पत्नी और बच्चों के साथ आनंद लेना चाहते हो तो यमुना के किनारे मत, और यमुना के किनारे भी चले गए तो वहां पर हाथ में मुरली धारण करने वाला और तीनों जगह पर टेढ़ा व सांवले रंग के कृष्ण के सामने भूलकर भी मत देखना। यदि एक बार भी देख लिया तो संसार से नाता टूट जाएगा और कृष्ण नाम का ग्रह तुम पर लग जाएगा, फिर वह ग्रह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ब्रज वृंदावन में जब किसी गोप का विवाह होता था तो विवाह करके जब कोई गोपी वृंदावन में गोकुल में आती थी तो उसकी सास पहले ही दिन उसे ट्यूशन देती थी कि देखो पानी भरने तुम जाती हो तो पानी भरने जाओ कोई बात नहीं, परंतु पानी भरते समय उस हाथ में मुरली धारण करने वाले सांवले कृष्ण के सामने कभी मत देखना, वो तुम्हें बुलाएगा और यदि एक बार भी देख लिया तो वे ऐसा पकड़ लेगा कभी छोड़ेगा नहीं। और ये सत्य है, कृष्ण एक तो पहले किसी को पकड़ते नहीं है और जिसको पकड़ लिया तो फिर छोड़ना नहीं जानते। पूतना गई थी कृष्ण के पास, भागवत के दशम स्कंद के सप्तम अध्याय में यह कथा है। पूतना गई थी, कंस की बहन थी, बकासुर की बहन बकी, कृष्ण के पास गई अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए। और पूतना गई, जब नंद बाबा के आंगन में गई, कृष्ण ने आंख बंद कर ली, मुंह फेर लिया, कहा कि ऐसी स्त्री का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। कृष्ण ने आंख बंद कर ली, मुंह फेर लिया, वे उसके पास जाना नहीं चाहते थे, परंतु पूतना ने जबरदस्ती कृष्ण को उठाया। अब कृष्ण उठे लेकिन उनका दूध भी पीना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती पूतना ने अपना स्तन कृष्ण के मुख में रख दिया। अब क्या करें, ये तो ग्रह है भाई। फिर तो एक ग्रह ने पूतना को ऐसा पकड़ा, दूध पीने शुरू किया, सारा दूध पी लिया कृष्ण, और दूध पीने के बाद पूतना का खून भी पी लिया। अब तो पूतना कहने लगी, छोड़ रे मुंचा मुंचा मुंचा, छोड़। लेकिन ये कैसे छोड़े, ये तो पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। हमारे कृष्ण जो खड़े हैं, ये पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। पूतना ने कहा, रे छोड़, परंतु ये नहीं छोड़े। और अंत में उस पूतना को अपने धाम में भेज कर ही उसे यहां पर छोड़े। वास्तव में उद्धव जी और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इससे बड़ा कृपालु इस संसार में कौन हो सकता है। आप लोग भगत भटक रहे हो दर दर गली गली। कहते, अहो बकीयम स्तन काल कूटम झिंगा सया पायत पीय साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोवियम कंवा दयालुम शरणम। जो स्त्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी और कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी कि मार डालू, ऐसी स्त्री को भगवान ने अपने निज धाम गोलोक वृंदावन में अपनी माँ का स्थान दे दिया। जो मर्डर करने आई थी उसे माँ का स्थान दे दिया, इससे बड़ा कृपालु इस संसार में कौन हो सकता है। फिर भी दुर्भाग्य है कि ऐसे कृष्ण को छोड़कर लोग अलग अलग जगह पर भटकते रहते हैं। अद्भुत। और भगवान श्री कृष्ण के इस गुण को देखकर सुखदेव गोस्वामी की ब्रह्म समाधि टूट गई। ब्रह्मानंद में लीन थे, परंतु जब यह श्लोक सुना और बरहा पीडम नटवर वपु, सुखदेव गोस्वामी हिल गए। भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण है, अद्भुत रूप है उनका, और वे जब किसी को पकड़ लेते हैं तब किसी को छोड़ते नहीं है। कहते हैं प्रहलाद महाराज को कृष्ण नाम के ग्रह ने पकड़ लिया था, कृष्ण ग्रह ग्रहिता। अरे हमें तो रोज भगवान को प्रणाम करना चाहिए, प्रभु ये ग्रह जल्दी से जल्दी हमें पकड़ ले, हम तो ढूंढ रहे हैं कृष्ण को। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा न वेद जगदीश्वरम। प्रहलाद महाराज में एक ऐसा गुण था, अद्भुत। हमारे गुरु महाराज इसके ऊपर बहुत सुंदर कहते हैं, न वेद जगत ईश्वरम। प्रहलाद महाराज इस जगत के बारे में एक पॉइंट एक चीज भी नहीं जानते थे। न वेद, वेद का अर्थ है जानना, न का अर्थ है नहीं। न वेद नहीं जानते थे किसके बारे में, जगत ईदृशम, इस भौतिक जगत के बारे में प्रहलाद महाराज जानने का प्रयास भी नहीं करते थे और कभी जानते भी नहीं थे। इसीलिए प्रहलाद महाराज कृष्ण को इस प्रकार से जानते थे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यदि कृष्ण को जानना है तो सबसे पहले जगत को भूलना पड़ेगा। यदि हम चाहे कि जगत को भी याद रखे और कृष्ण को भी याद रखे, ये कभी हो नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुंह फुलाना और हंसना, ये दोनों काम एक साथ कभी नहीं हो सकता है। करके देखिए जरा, घर पे जाकर कीजिएगा, नहीं हो सकता है। मुंह फुलाना और हंसना ये कभी साथ में नहीं हो सकता है। वैसे जगत को भी अपने जीवन में धारण करो, कृष्ण को भी कभी नहीं हो सकता। कृष्ण को धारण करने के लिए मन और बुद्धि खाली रखना होगा। जैसे जो लोग टेप रिकॉर्ड यूज करते हैं उसे पता होगा, टेप रिकॉर्ड में यदि किसी गाने को या किसी प्रवचन को रिकॉर्ड करना है तो ब्लैंक कैसेट यदि है पहले से जिसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक है उसमें रिकॉर्ड करना है तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है। परंतु पहले से कुछ रिकॉर्ड है और उसके ऊपर यदि कुछ रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड तो हो जाएगा, लेकिन जब आप बजाओगे तो पहले पहले का भी आएगा और बाद का भी आएगा, दोनों साथ में चलेगा। तो कृष्ण को हृदय में भरने के लिए भौतिक संसार की वस्तु को खाली करना होगा, जगत को भूलना होगा। परंतु दुर्भाग्य है, कृष्ण की भक्ति करने वाले भी रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर दुनिया का कचड़ा खोलकर बैठ जाते हैं। सुबह उठकर भागवत और गीता पढ़ना चाहिए तो संसार के लोग दुनिया का कचरा खोलकर पढ़ते हैं। क्या है न्यूज़पेपर में बताइए? आज आतंकवादी के द्वारा 10 मर गए, आज एक लड़की का बलात्कार हुआ, आज पुलिस के द्वारा ये मारे गए, आज इतने आतंकवादी आए, आज ये हार गया, आज फिल्म में ये हुआ, आज वो हुआ, क्या है इसमें? दुनिया के कचरे के अलावा कुछ नहीं है और संसार के लोग रोज सुबह उठकर उसे पढ़ते हैं और देने वाले भी इतने उदार हैं कि सबके घर घर जाकर देते हैं। भगवत गीता चाहे दे या न दे, परंतु न्यूज़पेपर तो रोज डेली जाकर देते हैं। यदि इस प्रकार से जगत को हम, और ये भी पैसे, वैसे तो जगत ऑलरेडी आ ही रहा है, न चाहते हुए भी आप रास्ते से जा रहे हैं तो सब कुछ देख रहे हैं, परंतु दुख की बात तो तब होती है कि पैसे दे देकर न्यूज़पेपर खरीद कर और टीवी और केबल खरीद खरीद कर दुनिया भर का कचरा जब देखते हैं तब कृष्ण जीवन में और हृदय में कभी नहीं आ सकते। कृष्ण को जीवन में लाना है, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है तो जगत को भूलना होगा। प्रहलाद महाराज नव वेद जगत ईदृश, इस वस्तु के ऊपर बहुत बहुत बोला जा सकता है। यदि मैं बहुत बोलने लगा तो हमारी कथा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। इसके ऊपर मैं एक कथा कर चुका हूं इसके पहले बंबई में, एक एक शब्द के ऊपर विस्तार से किस प्रकार से प्रहलाद महाराज, परंतु खैर यथा देश काल पात्र के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। कहते आसीन पर्यटन नश्न शयान प्रतिबन ब्रुवन नानु संधत्त एतानी गोविंद परिरंभितम। प्रहलाद महाराज चलते थे, बैठते थे, सोते थे, उठते थे और घर के सभी काम भी करते थे, फिर भी उसे यह भी पता नहीं रहता था कि मैंने ये काम कब कर दिया। जिसे आज हम माताजी के घर पर प्रसाद पाने गए, प्रसाद लेकर जब हम निकल रहे थे तो मैंने कहा कि धन्यवाद आपने हमें प्रसाद खिलाया, तो माताजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा कि मैंने कहां बनाया, ये तो कृष्ण ने बनाया। बहुत सत्य बात है। प्रहलाद महाराज इसी प्रकार घर के सभी काम करते थे, फिर भी उसे यह नहीं लगता था कि यह मैंने काम किया। क्यों? क्योंकि कहते हैं गोविंद परिरंभितम, क्योंकि प्रहलाद महाराज इसी भाव में रहते थे कि गोविंद मुझसे आलिंगन करके बैठे हैं, नित्य निरंतर मन बुद्धि और वाणी में भगवान रम रहे हैं। और जब मन बुद्धि और वाणी में भगवान होते हैं दुनिया के कोई भी काम करो वो सब ठीक से हो जाएंगे, क्योंकि वे काम फिर भगवान के हाथ में आ जाता है और भगवान ये सारे काम ठीक से कराते। हमारा काम है भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना, भगवान हमारे काम कर देंगे। कथा तो बहुत सारी हमारे पास है, परंतु एक छोटी सी कथा कह दूं इसके उपलक्ष में। दुर्योधन का एक नाई था जो कृष्ण का भक्त था, रोज शाम को दुर्योधन का चरण दबाता था, बेचारा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो बीमार हो गया और यदि वो दुर्योधन के पास न जाए तो दुर्योधन उसे मार कर पीटेगा, और बेचारा बीमार था इसलिए जा नहीं सका। अब क्या करे, जा नहीं सका। अंत में भगवान के शरण में मन से भगवान को याद किया, प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा करें। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के नाई का रूप धारण किया और वह बूढ़ा नाई बनकर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के घर पर गए और कहा सरकार आ गया हूं, बताइए हाथ दबाऊं या पांव दबाऊं। दुर्योधन ने कहा पांव दबाओ। देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, जिसके एक इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड गिर सकते हैं, वे परम ईश्वर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन एक पापी एक खल का चरण दबा रहे हैं। क्यों? अपने भक्त के खातिर, भक्त के खातिर, प्रेम के खातिर भगवान क्या कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अपने प्रेम के कारण अपने नियम को भी तोड़ देते हैं और यहां तक अपना मान भले चल जाए पर मेरे भक्त का मान कभी टलना नहीं चाहिए, मेरे भक्त के प्रण कभी जाना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के चरण दबा रहे हैं और महाभारत में वर्णन है, दुर्योधन पूछ रहे हैं कि अरे नाई, आज तुम्हारे हाथों में इतना जादू कैसे, इतना आनंद क्यों आ रहा है? रोज तुम मेरे चरण दबाते हो तो इतना आनंद नहीं आता है, आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है। क्यों? वो मूर्ख नहीं जान रहा था अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ कृष्ण उसका चरण दबा रहा है। देखिए भगवान अपने भक्त के लिए बीक जाते हैं। अर्जुन के ड्राइवर बन गए, ड्राइवर का काम शूद्र का है, कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर बन गए, भक्त अपने भक्त के खातिर, प्रेम के खातिर, प्रेम के खातिर भगवान क्या कुछ नहीं करते। प्रेम के खातिर दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर विदुर के घर पर जाकर विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खा लिए, प्रेम के खातिर। वास्तव में भगवान को भाव से, प्रेम से जीता जा सकता है। भक्त्या तुष्टति केवलम नच गुणे भक्ति प्रियो माधव, माधव कृष्ण केवल प्रेम से रिझते हैं। प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम, प्रहलाद महाराज का प्रेम था। वास्तव में हम रोज सुबह बोलते तो हैं अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति हो जो की है श्री कृष्ण प्रेम, परंतु झांककर देखना चाहिए कि या क्या इस प्रेम का 1% भी हमारे हृदय में आया है। यदि नहीं आया है तो क्या कमी है हम में, और प्रहलाद महाराज के साथ ये मिलाना चाहिए। यदि मिलाएंगे तो देखेंगे कि सारी कमी हम में ही है। आज भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे, प्रेम प्रदान करेंगे। और प्रहलाद महाराज की स्थिति बताते हैं, कचित क्वचित रुदती वैकुंठ चिंता शबल चेतना। कभी कभी प्रहलाद महाराज अचानक रोने लगते थे, सहसा कोई उसे कुछ कहता नहीं था, करता नहीं था, अचानक रोने लगते थे, क्वचित रुदती। क्यों भाई, क्या हो जाता था? प्रहलाद महाराज स्मरण करते थे, स्मरण करते करते जब कृष्ण का विरह होता था, कृष्ण के विरह होते ही तुरंत प्रहलाद महाराज रोने लगते थे। भक्ति करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि कृष्ण के विरह में आंखों से अजत अविरत अश्रुधारा निकलती, नयनम गलद अश्रुधारे। और ऐसी स्थिति चैतन्य महाप्रभु गंभीरा लीला आप सबको पता होगा, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहे और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार कृष्ण के विरह में एक भक्त को रहना चाहिए, भाव और प्रेम भक्ति में कैसी स्थिति होती है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल कहा नहीं, हम तो केवल बोलना बोलना भी नहीं जानते, कुछ लोग बोलना जानते, नयनम गलद अश्रुधारया, परंतु नयनम गलद अश्रुधारया क्या होता है चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में दिखा दिया। लीला आती चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के अंतिम साल में, अंतिम वर्ष में कृष्ण का इतना विरह होता था, इतना विरह होता था, चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू सूखता नहीं था और बस इतना ही कहते थे, कहां जाऊं कहां पाऊं बजेंद्र नंदन, बजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कहां जाऊं, वे मुझे कहां मिलेंगे। जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, बूढ़ा हो गया, परंतु कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, यह जीवन कुछ काम का नहीं है। कृष्ण जब नहीं मिलते थे उनका विरह होता था, अपना सिर दीवार के साथ रगड़ने लगते थे, पटकने लगते थे, खून की धारा बहने लगती थी और चैतन्य महाप्रभु रात दिन रोया करते थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु को संभालने के लिए केवल 2 लोग थे, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। और चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इतना विरह होता था, इतना विरह होता था, उसकी विरह ज्वाला तब शांत होती थी जब राय रामानंद और स्वरूप दामोदर उसे यह भागवत में प्रहलाद और ध्रुव की कथा सुनाते थे। ऐसी स्थिति होती है, यह है भाव और प्रेम का स्तर। हम क्या जानते हैं भक्ति भाव और प्रेम क्या होता है? हमारा स्तर तो अभी श्रद्धा में भी नहीं है, रूप गोस्वामी जो गिनाते हैं श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, हम तो श्रद्धा में भी हमारा पांव टिका हुआ नहीं। चैतन्य महाप्रभु महाभाव प्रेम के स्तर में थे। जब वे रोने लगते थे, जब कृष्ण का विरह होता था, उनके हाथ की संधि हाथ से अलग हो जाती थी, पांव अलग हो जाता था और बिल्कुल अष्ट सात्विक विकार मूर्छित होकर गिर जाते थे। कुछ लोग सोचने लगते थे ये भूत आ गया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का विरह होता था। रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करते थे, कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे। नयनम गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्ध या गिरा, आंख से अश्रु की धारा। और वास्तव में जब ऐसी स्थिति आती है, भगवान के प्रति जब प्रेम होने लगता है, तब यह पंच महाभूत का देह भी भार लगने लगता है। देह की बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े इंद्र और ब्रह्मा का पोष भी कीड़े के समान लगने लगता है। यह है महाभाव और प्रेम की स्थिति। और एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, जब तक कृष्ण के लिए रोगे नहीं तब तक कृष्ण मिलेंगे नहीं। नो पेन नो गेन, ये बिल्कुल सीधा सिद्धांत है। आप चाहते हो कि हंसते हुए खेलते हुए हंसी मजाक में कृष्ण मिल जाएंगे तो भूल जाइए। जब तक रोगे नहीं, ये इस आंखों से जब तक आंसू नहीं निकलेंगे तब तक कृष्ण किसी को नहीं मिलेंगे। भागवत प्रमाण है। भागवत के दसम स्कंद के 31वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, रासलीला करते करते कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आइए आइए, कृष्ण नहीं आए। 18 श्लोक में कृष्ण के लिए गोपी गीत गाया, जयति तेदिकम जन्म ना व्रज, श्रयत इंद्रिया शश्व दत्त रही, दैत दृश्यताम दिक्षु तावकाश, त्वई घृतासव ताम विचिन्वते, शरद उदास ये साधु जात सत। एक से एक गोपियां गीत गा रही हैं, परंतु फिर भी कृष्ण आए नहीं। और अंत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि रुरुदु स्वस्वरम राजन, हे राजन हे परीक्षित, इतना बुलाने के बाद भी जब कृष्ण नहीं आए तब सभी गोपियां साथ में मिलकर रुरुदम सुस्वरम एक साथ मिलकर जब गा गा कर रोने लगी, जब एक साथ रोने लगी, तब जाकर कृष्ण सभी गोपियों के सामने प्रकट हुए। यह है भक्त की, यह है प्रेम और महाभाव की स्थिति, यह है प्रेम का स्तर। तो जब भगवान के प्रति प्रेम होता है तब आंखों से आंसू निकलता है। यहां पर नारद मुनि वर्णन करते हैं कि क्वचित रुदति वैकुंठ, कभी कभी प्रहलाद महाराज रोने लगते थे और कभी कभी प्रहलाद महाराज हंसने लगते थे। ऐसा नहीं कि 24 घंटा रोते थे, कभी कभी हंसने लगते थे, कभी कभी भगवान की लीला को याद करके वे हंसते थे। और क्वचित उद्गायति क्वचित, कभी कभी जोर जोर से गाने लगते थे, हरे कृष्णा हरे, नदति क्वचित वैकुंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित। और कभी कभी वे चलते चलते नाचने लगते थे। असल में भक्त जो होते हैं गाने में नाचने में कभी शर्म नहीं करते हैं। प्रहलाद महाराज नाचने लगते थे और क्वचित भावनायुक्त तन्मयो अनुचकार, और कभी कभी वे इतने भाव की स्थिति में आ जाते थे, भगवान कृष्ण जिस प्रकार से लीला किए हैं वैसे ही वे लीला करने लगते थे। कृष्ण ऐसे खड़े रहते थे तो प्रहलाद महाराज वैसे खड़े रहते थे, कृष्ण जैसे असुरों को मारते थे तो वैसे वे लीला करने लगते थे, बिल्कुल महाभाव की स्थिति में। क्वचित उत्पुलक तुष्णिम आस्ते संस्पर्श निवृत्त अस्पंद प्राण यानंद सलीला मिलिते क्षण। और कभी कभी प्रहलाद महाराज को अष्ट सात्विक विकार होता था, रोमांच कंपाशु तरंग भाजो। वास्तव में ये गुरु के लक्षण है। जिस गुरु में यह होता है उसको गुरु धारण करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शिक्षाष्टकम गुरुवाष्टकम में यह कहते हैं कि गुरु को क्या होता है, कहते हैं महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत। महाप्रभु की परंपरा में जब वे कीर्तन करते हैं नृत्य करते हैं तब उसे क्या होता है गुरु को, तब गुरुदेव को रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो। गुरु को रोमांच होता है, उनके रोंगटे खड़े होते हैं, उसके आंखों से अश्रु निकलता है, तरंग एक एक तरंगा तरंगायित हो जाती है, उनके हृदय में तरंग आ जाती है। ये है गुरु का लक्षण। जिस गुरु में ये हो रहा है, यदि उसकी परंपरा में आप हो तो निश्चित आगे चलकर आपके अंदर में भी यह भाव आ सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा यह गुरु के लक्षण बताए गए और हमारे इस्कॉन परंपरा में ऐसे गुरु का स्थान है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के अनेक आचरण और अनेक गुणों का वर्णन किए। कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न हो सकता है कि हम तो कनिष्ठ भक्त हैं, हमें भी प्रहलाद महाराज की तरफ बनना है तो हमें क्या करना होगा, होता है ये प्रश्न। हमें भी यदि प्रहलाद महाराज की तरफ बनना है तो हमें क्या करना होगा, इसका उत्तर बताते हुए नारद मुनि कहते हैं, सउत्तम श्लोक पदार विंदयो निर्वेशया किंचन संग लब्ध्या तनवन पराम निवृति मात्मनो मुहु दुसंग दीनस्य मन शम व्यदात। बस यदि प्रहलाद महाराज की तरह हमें भक्त बनना है तो एक ही चीज करनी है कि इस संसार में जो प्रहलाद जैसी भक्ति कर रहा है ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। बस यदि ऐसे शुद्ध भक्तों का संग हो गया, ऐसे भक्तों के मुख से यदि कथा सुनने लगे, ऐसे भक्तों के उपदेश को सुनने लगे तो आप भी प्रहलाद की तरह भक्त बन जाओगे। ये नारद मुनि का कथन है। ऐसे भक्तों का संग करना यही, और ये केवल नारद मुनि नहीं, भागवत के पंचम स्कंद में जड़ भरत रहुगण को यही उपदेश देते हैं। शोभिर देश का राजा रहुगण सांख्य शास्त्र का उपदेश प्राप्त करने के लिए गंगा सागर कपिल देव के आश्रम में जा रहा था। बीच में जड़ भरत मिले, जड़ भरत ने कपिल रहुगण को उपदेश दिया कि हे राजन, रहुगणेत तपसान याति, राजन तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं, न च इज्या निर्वपणात गृहात, घर छोड़ देने से भगवान नहीं मिलते हैं। ये सारे जितने भी कुत्ते बैल गधे घर के बाहर ही रहते हैं, क्या भगवान मिल गए उसे? और तुम चाहते हो तपस्या से भगवान मिलते हैं, तो संसार में कुछ ऐसे प्राणी है जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो क्या उसे भगवान मिल गए? न चैज्या निर्वपरात गृणात, न छंदसा न जल अग्नि एव सूर्यो, सूर्य में तपने से या पानी में पड़े रहने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो रहुगण ने पूछा तो भगवान कैसे मिलेंगे, तब अंत में कहते हैं विना महत्पाद रजोभिषेक, जब तक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के चरण के रज से अभिषेक नहीं करोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण की रज सिर पर लगानी, इसका अर्थ है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुननी होगी, उनके मुखों से उपदेश सुनोगे, वो उपदेश जब जीवन में धारण करोगे तो निश्चित भगवान मिलेंगे। ये एक शास्त्र में नहीं, समस्त शास्त्र में भगवान कपिल देव भी इस बात को कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति रितकर्ण रसायणा कथा तज्जो शनादास अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगान, जब संतों का संग होगा, शुद्ध भक्तों का जब प्रकृष्ट रूपेण संग करोगे तब यह प्राप्त होगा। और भगवान श्री रामचंद्र शबरी जी को उपदेश देते हुए यही बात कहते हैं कि हे शबरी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, हे शबरी जी सबसे पहली भक्ति क्या है? कहते संतों का संग करना, भक्तों का संग ये सबसे पहली भक्ति है। और ये केवल एक जगह पर नहीं, समस्त शास्त्र सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं, साधु संग साधु संग साधु संग, सर्व शास्त्र कई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा भी साधु संग हो गया सर्व सिद्धि। और रूप गोस्वामी, हम जिस आचार्य के अनुगत्य में है, हम जिसके अनुग है, हम सब रूपानुग है, ऐसे रूप गोस्वामी किस व्यक्ति के साथ कैसा संग करना चाहिए बहुत अच्छी प्रकार से बताते हैं। देखिए जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, जो नए नए भक्ति में आते हैं, वे सोचते हैं कि सब भक्त एक समान, परंतु ऐसा नहीं है। श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बहुत सुंदर बात बताते हैं कि कैसे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं कृष्णेति यस्य गिरितौ मनसाद्रियेत, जो आयराम गयाराम भक्त हैं, जो अपने मुख से कृष्ण का नाम कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को मन से प्रणाम कर देना चाहिए, उसका संग करने की जरूरत नहीं है, दूर से प्रणाम भाई। ये है जो आयराम गयाराम भक्तों के लिए। कृष्णे ति यस्य गिरी, जिसके गिरी पर कृष्ण इति कृष्ण नाम निकलता है, उसे मनस आद्रियत, उसको मन से आदर दो। और दूसरी बात बताते हैं दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्य भजंत मीशम, जिस व्यक्ति ने दीक्षा ली है, हरिनाम दीक्षा ली है, ऐसे लोगों को दंडवत प्रणाम करो। ऐसे का संग करने के लिए नहीं कर रहे हैं, जिसने दीक्षा ली है उसको केवल प्रणाम करो, संग किसका करना है। कहते हैं शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्ध्या। संग तो वैसे भक्तों का करना है जो भक्ति के तत्व को जानता है, जो शब्द ब्रह्म में निष्णांत है, और जो जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं किया है, ऐसे भक्तों को चुन चुन कर ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। बिल्कुल क्लियर श्लोक है, बिल्कुल क्लियर बात है, आप उपदेशामृत जाकर पढ़ सकते हैं। भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम यह ग्रंथ है। जो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, नाम लेते हैं, नाम जपते हैं, उसको केवल दूर से प्रणाम करना है, जिसने दीक्षा ली उसको दंडवत प्रणाम करना है, और जो लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, भक्ति भजन के तत्व को जानते हैं, शब्द ब्रह्म में निष्णांत हैं, ऐसे साधु ऐसे संत ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे भक्तों को अपने घर पर बुलाकर भोजन देना, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट विधम प्रीति लक्षणम, ये आगे बहुत कुछ रूप गोस्वामी बताते हैं, परंतु यह सब होना चाहिए ऐसे भक्तों का संग। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो बहुत संग करते हैं, रात दिन भक्तों के साथ ही रहते हैं, फिर भी भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है। परंतु कैसे भक्तों के साथ रहना चाहिए, कैसे भक्तों का संग करना चाहिए, रूप गोस्वामी बता रहे हैं। और भक्तों यदि कोई न मिले, आप ढूंढोगे बहुत कम मिलेंगे, कोई न मिले तो प्रभुपाद जी तो बैठे हैं अपने ग्रंथ में, प्रभुपाद जी का ग्रंथ निकाल लीजिए, पढ़ने लगिए, आप शुद्ध भक्त की संगति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अब श्री राधा गोविंद भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 तो नारद मुनि ने कह दिया यदि प्रहलाद की तरफ बनना है तो शुद्ध भक्तों की संगति कीजिए, शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनिए। अब नारद मुनि इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि युधिष्ठिर तस्मिन महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्य कशिपुराजन अकरोत अधम आत्मजे। हे युधिष्ठिर देखो इतना सुंदर प्रहलाद था, इतने सुंदर सुंदर गुण थे, फिर भी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के साथ दोष द्रोह किया। युधिष्ठिर महाराज के मन में कुछ समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को प्रश्न पूछे कि नारद मुनि प्रहलाद 5 साल का बालक था और आपने कहा कि बहुत सुंदर और सुशील भी था और हिरण्यकशिपु का पुत्र था, फिर भी हिरण्यकशिपु ने उसे मारने का प्रयास क्यों किया। संसार में देखा गया है कि एक बाप एक पिता अपने पुत्र के साथ बहुत प्रेम करता है, और किसी के साथ प्रेम करे या ना करे, अपना पुत्र कैसा भी हो फिर भी उसे प्रेम करता है। देखा गया है संसार में एक पिता के 5 पुत्र हैं, एक अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, फिर भी वो 5ों के प्रति उसका प्रेम समान होता है, पुत्र है। हम देखते हैं संसार में एक पिता अपने पुत्र को कंधे पर बिठाया है और यदि वह सुसु एक नंबर कर देता है फिर भी पिता को आनंद आता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं उस पिता को ऐसा लगता है कि गंगा जल का प्रवाह मेरे सिर पर आ गया है, सौभाग्य महसूस करता है, आज मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा पुत्र है। और दूसरे का पुत्र यदि बिल्डिंग के कंपाउंड में सुसु कर रहा है तो यार छी 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 भगाओ भगाओ इसे यहां से। क्यों भाई? क्योंकि वो मेरा नहीं है। जो मेरा है, संसार में देखा गया है कि अपने पुत्र से सब लोग प्रेम करते हैं, हिरण्यकश्यपु का अपना पुत्र था फिर भी उससे द्वेष क्यों किया। और हे नारद जी, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं पिता जो होते हैं कभी कभार अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए डांट देते हैं और कभी कभी थप्पड़ भी मार देते हैं, परंतु जान से मारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहां हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद से जान से मारने की कोशिश क्यों की? हे नारद जी, आप तो बहुत बड़े भक्त हो, आप तो विद्वान हो, आप तो प्रहलाद के गुरु हो, आप तो सब कुछ जानते हो, कृपया करके हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास क्यों किया और नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ यह कथा सुनाइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया और यहाँ पर इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम सप्तम स्कंदे पंचम अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास क्यों किया। तब नारद मुनि इसका उत्तर देते हैं। अब कथा प्रारंभ करते हैं और एक कथा। श्री नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृतकाव्य किला सुरे षण्डामर्कसुतो तस्य दैत्यराज गृहान्तिके। श्री नारद मुनि कथा को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि किल, बहुत बहुत वर्ष पहले की यह बात है, पौरोहिताय भगवान किल काव्य असुरे, असुरों ने काव्य, काव्य का अर्थ है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का एक नाम है काव्य, क्योंकि शुक्राचार्य का के पिता का नाम है कवि, जैसे वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव हुआ, व्यासदेव के पुत्र का नाम वैयासकी होता है, वैसे ही कवि के पुत्र का नाम काव्य हुआ। तो कवि के पुत्र होने के कारण शुक्राचार्य को काव्य कहा जाता है। कहते हैं बहुत बहुत वर्षों पहले की यह बात है, असुरों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? कहते हैं पूरम हित करोति इति पुरोहित, जो पुर का हित करे अर्थात जो देश का, जो राजा का हित करे उसे पुरोहित कहा जाता है। तो असुरों ने बहुत समय पहले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। क्यों बनाया? इसमें भी एक कथा है। शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति के बीच में कुछ झगड़ा था। शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति के बीच में कुछ झगड़ा था और असुरों का भी देवताओं के प्रति झगड़ा होता है। तो एक नीति आप सब लोग जानते होंगे, दुश्मन का जो दुश्मन होता है उसे दोस्त बना लेना चाहिए तो हमारी शक्ति डबल हो जाती है। दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं तो हमारी शक्ति डबल हो जाती है। तो असुरों ने देखा कि शुक्राचार्य देवताओं के शत्रु हैं, इसलिए शुक्राचार्य को गुरु बना लेंगे, पुरोहित बना लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य को, और शुक्राचार्य को गुरु बनाने के और भी कारण है, शुक्राचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, शुक्राचार्य बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे। शुक्राचार्य एक ऐसी विद्या जानते थे, कहते हैं मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की विद्या जानते थे, और उसे मृत संजीवनी विद्या कहा जाता है। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कवि नाम उष्णाम कवि, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। तो शुक्राचार्य बहुत प्रवर थे, इसलिए देवताओं ने, असुरों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। नारद मुनि आगे कहते हैं शंडा अमरक सुतो तस्य तस्य तस्य, अर्थात उस शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, असुरों के असुर के गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, उसका नाम क्या था? कहते हैं शंड अमरक इति प्रोक्तम, उनका नाम शंड और अमरक था। दैत्य राज गृहांती के, दैत्य राज दैत्यों का जो राजा था हिरण्यकश्यपु, वह हिरण्यकश्यपु गृह अंति के अपने गृह के अंति अर्थात बाजू में उसको एक घर बना दिया था। तो ये जो शुक्राचार्य और उनके पुत्र कहां रहते थे? दैत्य राज गृहांती के हिरण्यकश्यपु के घर के बाजू में। अब देखिए बहुत सुंदर सिद्धांत है, हिरण्यकश्यपु अपने गुरु को अपने घर पर भी नहीं रखा और घर से दूर भी नहीं रखा। हमें भी हमारे गुरु से दूर भी नहीं रहना चाहिए और इतना पास में भी नहीं रहना चाहिए। यदि गुरु से बहुत दूर रहते हो तो गुरु को समझ नहीं पाओगे, और यदि गुरु से बहुत निकट रहते हो तो भी गुरु को नहीं समझ पाओगे। बहुत दूर रहते हो तो उसके बारे में नहीं जान पाओगे, और यदि गुरु के बहुत निकट रहते हो तो फिर उसमें मर्त्य बुद्धि कर बैठोगे, अरे भाई ये तो हमारे तरह है, ये तो हमारे जैसे है। इसलिए गुरु से दूर भी नहीं रहना चाहिए, गुरु से निकट भी नहीं रहना चाहिए, मीडियम फासला बनाकर रखना चाहिए। हिरण्यकश्यपु इस बात को जानता था, इसलिए दैत्यराज गृहांती के उसके घर के बाजू में उसको एक घर रखकर दिया। तो राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नय कोविदं पाठिया मास्तु पाठियान अन्यश्चा असुर बालकान। तो हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रह्लाद को, ये शुक्राचार्य के जो दो पुत्र थे शंड और अमरक, शंड और अमरक एक गुरुकुल खोले थे, उनकी एक गुरुकुल चलती थी, और हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रह्लाद को शंड और अमरक के पास पढ़ने के लिए भेजा। और भी जितने भी असुर हिरण्यकश्यपु के साथ रहते थे वे भी अपने अपने बालकों को प्रह्लाद के साथ शंड और अमरक की गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। और ये लोग क्या पढ़ाते थे? नय कोविदम, ये शंड और अमर कोई धर्म का ज्ञान भागवत और गीता नहीं पढ़ाते थे, शंड और अमर भौतिक विद्या पढ़ाते थे। कैसी विद्या? कहते कैसे राज्य करना चाहिए, कैसे कर टैक्स वसूली करनी चाहिए, दूसरे के साथ युद्ध कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से राजनैतिक शिक्षा देते थे। यत्रत्य गुरुना पोक्तम सुश्रुवे अनुपपाठ च न साधु मनसामेने सोपराध असत ग्रहाश्रयम। देखिए प्रहलाद महाराज पढ़ने में कैसे थे। प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में जो भी पढ़ाया जाता था वे पढ़ लेते थे, और पढ़कर एक बार पढ़कर याद कर लेते थे। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा तो प्रहलाद महाराज पढ़ने में कैसे थे? प्रहलाद महाराज को जो भी पढ़ाया जाता था सब कुछ याद कर लेते थे, सब कुछ। क्यों प्रश्न होता है, क्या प्रहलाद महाराज को पढ़ने में बहुत आनंद आता था? नहीं, नारद मुनि कहते हैं न साधु मनसा मेने, प्रहलाद महाराज को शंड और अमर जो पढ़ाते थे वे उसे अच्छा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि स्व पर असद आग्रहम, क्योंकि शंड और अमर जो पढ़ाते थे वे सब इस भौतिक देहिक लेवल का ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इसलिए प्रहलाद महाराज उसे पसंद नहीं करते थे। वास्तव में भक्त जो होते हैं वे भौतिक ज्ञान को पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से प्रहलाद शंड और अमर की गुरुकुल में एक साल तक पढ़ा। कितने साल तक? एक साल तक। होता है ना, यहां पर भी एक साल तक बालक पढ़ता है और एक साल के बाद वेकेशन होता है, कितने महीने का? दो महीने का। तो प्रहलाद महाराज गुरुकुल में एक साल पढ़े, फिर वेकेशन आ गया। वेकेशन आया तो प्रहलाद महाराज को अपने घर पर भेज दिया। प्रहलाद महाराज घर पर आए, घर पर आए तो एक समय की बात नारद मुनि कहते हैं, देखिए अब इंटरेस्टिंग विषय आ रहा है। एकदा सुरराड पुत्रम अंक आरोप्य पांडव, हे पांडव हे युधिष्ठिर, आपके पिता ने भी आपको गोद में बिठाया होगा, पांडव संबोधन दे रहे हैं। एक समय की बात, प्रहलाद महाराज छुट्टियों के दिन में घर पर आए, घर पर आए तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया। जैसे आजकल के पिताजी पूछते हैं ना, जब बालक घर पर आता है तो पूछते हैं कि बेटा स्कूल में क्या पढ़ाया, पूछते हैं। वैसे हिरण्यकश्यपु बेचारा बालक एक साल के बाद आया है, तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को गोद में बिठाए और गोद में बिठा कर कहा कि प्रपच्छ कथ्य कथ्य ताम वत्स्य मन्यते साधु यद भवान, हे वत्स, हे पुत्र, हे प्रहलाद, बेटा बेटा बताओ तुमने एक साल तक स्कूल में क्या पढ़ा। एक साल तक तुमने जो स्कूल में पढ़ा उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। हिरण्यकश्यपु को लगा कि प्रहलाद ऐसा कहेगा कि कैसे टैक्स वसूल करना चाहिए, ये अच्छा लगा। या हिरण्यकश्यपु ने सोचा होगा कैसे मोर्चा लगाना चाहिए, ये अच्छा लगा, ये कहेगा। हिरण्यकश्यपु को पता नहीं था कि प्रहलाद ऐसा उत्तर देंगे। कैसा? जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा कि बेटा सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, प्रहलाद ने पहले तो कहा होगा पिताजी मत पूछिए, आपका भला होगा यदि आप नहीं पूछेंगे, और यदि आप पूछ ही रहे हैं तो सुनिए क्या अच्छा लगा। श्री प्रहलाद वाच। अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा है बेटा सबसे अच्छी बात तुम्हें कौन सी लगती है, तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं पिताजी ये आपकी तरह संसार में सब लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इससे तो अच्छा है हाथ में माला झोली लेकर वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। कल्पना करो उस हिरण्यकश्यपु के मन के ऊपर क्या बीती होगी। परंतु थोड़े व्याकरण के अनुसार इस श्लोक को हम कथा में सुनेंगे। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं तत् साधु मनिये असुरवय देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हितवात्म पातम गृही मंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कहते हैं असुरवर्य, सबसे पहले प्रहलाद महाराज अपने पिता को पता है क्या कहते हैं, आज का बालक अपने पिता को पिताजी कहता है और एडवांस है तो डैडी कहता है, जीते जी मार देता है, और कुछ तो डैड ही कहते हैं, डैड मरा हुआ, और होता भी ऐसा है। ये आजकल के पुत्र बालक पिता के धन को इतना खाली कर देते हैं, इतना खाली करते हैं, जीते जी मार देते हैं, डेड कर देते हैं, फिर वो कोई काम का नहीं रहता। तो आज के बालक पिता कहते हैं, पिताजी कहते हैं, डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं। प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यपु को क्या क्या कहा, हे असुरों के सरदार सुनिए मुझे क्या अच्छा लगा। ऐसा क्यों कहा प्रहलाद ने, और यदि प्रहलाद ने ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यपु को अच्छा लगा। हाँ, हिरण्यकश्यपु को लगा नहीं, ये मेरे राजत्व को जानता है। चलो डैडी पापा नहीं कहा तो असुरों का सरदार तो कह रहा है, ये मेरे प्रभाव को जानता है। परंतु प्रहलाद महाराज एक बार नहीं, प्रहलाद महाराज अपने जीवन भर हिरण्यकश्यपु को पिता नहीं कहे। क्यों? क्योंकि पिता उसे कहा जाता है जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाए, जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति सिखाए वही पिता पिता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं गुरु न शिष्यात जननी न शिष्यात पिता न सस्यात् देवम न सस्यात् न मोचयेन समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है, वह माँ माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति नहीं सिखा सकते। जो पिता और जो माता अपने पुत्र को भगवान का भक्त नहीं बना सकता है वह माँ माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है। इसलिए प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को अपने जीवन भर पिता नहीं कहा। वास्तव में पिता वही पिता है जो अपने पुत्र को भक्त बनाए। भक्ति सिद्धांत महाराज, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, चाहे प्रभुपाद जी, वे बारंबार कहते थे यदि आप में सामर्थ्य है कि आप अपने पुत्र को भक्त बना सको तब ही पुत्र पैदा करना, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो पुत्र उत्पन्न करने का आपको कोई हक नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर तो यहां तक कहते थे यदि आप अपने पुत्र को भक्त बना सकते हो तो 100 पुत्र उत्पन्न करो, उसमें कोई दोराय नहीं है। परंतु भक्त अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकते हो तो एक पुत्र भी उत्पन्न मत करना। ये पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को भक्त बनाए। और ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव ने आचरण करके दिखाया। आजकल के माँ और पिता का क्या कहा जाए, आजकल के बालक पुत्र लोग भक्ति करना चाहते हैं परंतु माता पिता कहते हैं कि बेटा अभी से भक्ति शुरू कर दिया, ये भक्ति तो बूढ़ा होने के बाद करने जैसी है, अब तो खेलने कूदने की उम्र है, कमाने की खाने पीने की उम्र है, अभी से क्यों भक्ति कर रहा है। आज के माता पिता ऐसा कहते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ बालक भक्त में लगे हैं परंतु आजकल के माता पिता कसाई के समान, वास्तव में वो माता पिता नहीं है। माँ और पिता तो होने चाहिए ऋषभदेव की तरह, और माँ होनी चाहिए सुमित्रा की तरह। रामायण का प्रसंग याद कीजिए भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र को जब वनवास दिया गया, कैकेयी ने वनवास दिया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए राम को वन में जब भेजा गया, भगवान श्री रामचंद्र जब वन में जाने के लिए तैयार हुए, जगत जननी माता सीता भी तैयार हुई, और उसी समय लखन लाल अनंत शेष के अवतार क्रोधित होकर आए कि प्रभु किसने तुम्हें वनवास दिया है, अभी उसे मार डालूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। भगवान ने उसे शांत किया और शांत करते ही लखन लाल ने राम को कहा कि प्रभु आप यदि 14 साल के लिए वन में जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान राम ने बहुत समझाया, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, माता पिता की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, लखन तुम यहां पर रहो, माँ और पिता की रक्षा करो। लखन नहीं माने, कहे प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे आपके साथ चलना है। जब बहुत कहने पर नहीं माने तब भगवान राम ने इतना ही कहा कि लखन यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अपनी माँ सुमित्रा से परवानगी लेकर आओ, अपनी माँ से कहकर आओ कि मैं जा रहा हूं, यदि तुम्हारी माँ मंजूरी देगी जाने के लिए कहेगी तभी तुम आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। रामायण में वर्णन है जब लखनलाल अपनी माँ सुमित्रा के पास गए तो एक एक कदम एक एक कल्प के समान लग रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि मेरी माँ ने मुझे ना कह दिया तो मैं क्या करूंगा। फिर भी लखनलाल अपनी माँ सुमित्रा के पास आए। अपनी माँ सुमित्रा के पास आकर लखनलाल कहे के माते माते मेरे भाई राम 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं, मेरी इच्छा है उनकी सेवा करने के लिए मैं भी वन में जाऊं, तो माँ मैं तुमसे आदेश लेने आया हूं, क्या मैं 14 साल के लिए राम की सेवा करने के लिए वन में जाऊं। कल्पना करो उस दिन उस माँ ने क्या उत्तर दिया होगा। सुमित्रा जी ने एक माँ का आदर्श स्थापित किया है, बेटा बेटा लखन राम की सेवा करने के लिए जाना है और मुझे पूछने के लिए आ गए, मुझे पूछने की बात है, मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन वहां पर होता है जहां सूर्य होता है, तेरा जीवन वहां पर है जहां पर तेरा भाई राम, और तू राम की सेवा करने के लिए जा रहा है, आज मैं धन्य हो गई, वास्तव में आज मैं संसार के लोगों को कह सकती हूं कि मैं पुत्र वाली हूं। लखन आज तक मैं पुत्र वाली नहीं थी परंतु आज जब तू राम की सेवा करने के लिए जा रहा है आज मैं पुत्र वाली हो गई। पुत्रवती जुबती जगसोई रघुपति भगत जात सितु होई। वही माँ पुत्रवती कहलाने के लिए योग्य है जिसका पुत्र रघुपति राम और कृष्ण का भक्त है। और जिसका पुत्र राम और कृष्ण का भक्त नहीं है, नतरु बांज बलि बानी पियानी, ऐसी माँ को चाहिए कि वो बांझ ही रह जाए, वे तो एक पत्थर को पाले। क्योंकि राम और कृष्ण की भक्ति नहीं करने वाले पुत्र केवल अपने माँ बाप की जवानी को काटने के लिए ही जन्म लेते हैं, माँ बाप को दुख देने के लिए और वृद्धाश्रम में भेजने के लिए ही जन्म देते हैं, जिसके पुत्र राम और कृष्ण के भजन नहीं करते। आज आप देखिए हजारों वृद्धाश्रम खुल गए हैं, क्यों? भक्ति का अभाव है। और जिसके पुत्र राम और कृष्ण के भक्त हैं, वे अपने माता पिता को तो रखते हैं और भी सभी माता पिता को स्थान देते हैं। इसलिए हम कहते हैं अपने पुत्र को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। संसार के आजकल के माँ बाप अपने पुत्र को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा ट्यूशन देते हैं, अच्छा कपड़ा देते हैं, परंतु भक्ति नहीं सिखाते हैं। इसीलिए वही लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़कर बहुत बड़ा पढ़ लिख कर बड़ा होकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देता है। परंतु हम तो इतना ही कहते हैं कि अपने पुत्र को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ या न पढ़ाओ, अच्छा भोजन दो या न दो, अच्छा कपड़ा दो या न दो, अच्छा ट्यूशन दो या न दो, केवल एक भक्ति सिखा दो, बड़ा होकर आपका जीवन आपको आपके जीवन का पालन करेगा, गारंटी हम लोग देते हैं। क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उसमें समस्त गुण उपस्थित हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवन अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, भागवत प्रमाण है। जो अनंत भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगता है उनके हृदय में सारे गुण उपस्थित हो जाते हैं, सभी दैवी गुण आ जाते हैं। जैसे 1000 की नोट में 500 की, 100 की, 50 की, 10 की सब नोट होती है, वैसे भगवान कृष्ण की भक्ति जो करने लगता है उसमें समस्त गुण आ जाते हैं। तो वास्तव में हमारे पुत्रों को, हमारे बालकों को भक्ति देने की जरूरत है, नहीं कि और कुछ। संसार के लोग भक्ति के अलावा अपने पुत्र को सब कुछ देते हैं, बहुत बड़े दुख की बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वास्तव में वही माँ माँ है, वही पिता पिता है जो अपने पुत्रों को भगवान श्री राम और कृष्ण का भक्त बनाता है। जो अपने पुत्र को भक्त नहीं बना पाए वे माँ माँ नहीं, वे पिता पिता नहीं। इसलिए जो भी माँ और पिता के स्थान में है उसे चाहिए कि अपने पुत्र को भक्त बनाए। यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने पिता को पिता नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पिता पिता कहलाने के योग्य नहीं है। प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देंगे, समय बहुत हो चुका है, 9:45 बज चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसका उत्तर क्या है कल सुबह